स्वामी जी हमारे बीच में हर हर दो बातें स्वामी जी हमारे बीच में
हर हर
स्वामी जी हमारे बीच में
हर हर।
अब मैं अध्यक्ष महोदय डॉक्टर ओपी गोयल साहब से निवेदन करूंगा कि वो स्वामी जी को माधव पंडली अर्पण करें और दो शपथ करें।
मंदिर की सजा दिए, उन्होंने चिंतन किया, प्रसाद किया और ज्ञान की बहुत चिंताइयों का भी की। हम लोगों ने बहुत ही समझ ली उसके विकास के साथ हैं, उनको तो जीवन में सही रूप में प्राप्त ही कर लिया, लेकिन जब देखा तो उसको संतुष्ट नहीं है, तब उन्होंने अध्यात्म विद्या की ओर ध्यान दिया। अध्यात्म विद्या का तात्पर्य है अपने आप को ठीक की बुद्धि दान करके अपना विकास करना, अपने व्यक्तित्व का विकास करना, अपने अंदर छुपी हुई शक्तियां हैं उनको जागृत करना और अपने आप को पूर्ण बनाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाना जहां से संसार की विपत्तियां दुख की लाइन से ऊपर समझाना विद्या का विकास किया और उन्होंने जो कुछ भी उपलक्षण की थी उनका पता वेदों में अगले वेदों की जो बात है वो बंद कहलाते हैं और ऋषि लोग उनकी दृष्टा है। दृष्टा से बात करिए कि उनके हृदय में वो ज्ञान उद्भूत हुआ परमात्मा की कृपा से, उसके प्रकाश से उनके हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान के लिए दृष्टा से अनुभव करता है। जो अनुभूति उनको हुई उनको उन्हें शब्दबद्ध करके लिखा तो तत्कालीन भाषा संस्कृत भाषा में जो वाक्य बने वो मंत्र प्रसाद। वे मंत्रों के दृष्टा अनेक ऋषि हुए हैं और मंत्रों के साथ साथ उन ऋषियों का भी नाम जुड़ा हुआ है, जैसे गायत्री मंत्र के साथ में विश्वामित्राम का विश्रांत ऋषि हो गए हैं, उनका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे और बहुत से ऋषि हो गए हैं, व्यास ऋषि हो गए हैं, वो वैसे उन लोगों ने परमात्मा की कृपा से उसकी शक्ति अपने अंदर प्राप्त होने पर उनके अंदर जो ज्ञान परम ज्ञान से ज्ञान राष्ट्र में ज्ञान प्रकाशित हुआ तो सत्यंतर में चलकर के व्यास जी ने उन समस्त जो ज्ञान उसमें उपलब्ध था समाज में प्रचलित था एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुना सुना करके मौखिक रूप से बताता रहता था और दूसरे लोग ज्ञान का संग्रह करते रहते थे, स्मरण करते थे अपनी बुद्धि में। इसलिए वो वेद उपनिषद भी कहे वो वेद श्रुति भी कह रहा है। श्रुति का तात्पर्य है सुनकर के जानना, श्रवण के द्वारा सुनकर के जो ज्ञान प्राप्त किया जा रहा था वो वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है। व्यास जी ने उस श्रुति ज्ञान को लिपिबद्ध कर दिया पुस्तकार का रूप में सार्वजनिक दूसरा पत्रों के ऊपर और उसका संपादन भी। संपादन के माने ये है कि प्रारंभ में वेद में कौन सी बातें दे रही है, उसके बाद कौन देनी है, उसके बाद कौन देनी है, इस प्रकार के उनके कर्म करनी है कि इसके बाद वो सब जितना भी ज्ञान था वो उन्होंने उपलब्ध कर दिया। उन्होंने देखा कि समस्त ज्ञान को चार भागों में बांटना पड़ेगा, इसलिए चार वेद हो गए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये चार वेद हो गए। इन हर चार हर वेद के चार चार भाग हो गए, खंड हो गए उनके, हर वेद में पहले शुद्ध भाग है, फिर उसके बाद ब्राह्मण भाग है, फिर आरण्य है, फिर उपनिषद में कर्म का विधान है वो उसमें लिखा गया। हमारा जीवन कर्म से संबंधित है, कर्म से ही हमारा बनना और बिगड़ना संभव है। हमारे कर्म ठीक नहीं हुए तो हम दुर्बल हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, लोट आ जाती है, दुर्गुण आ जाती है और दुखी होते हैं। कर्म का सुधार करके हम अपना सुधार कर सकते हैं, अपने मंत्र को भी सुधार कर सकते हैं, शरीर का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक संबंध भी शुद्ध बना सकते हैं और जीवन सुख होता है। तो ये जो कर्म का प्रभाव है इसे धर्म की जो हैं इसका निर्माण वेदों के जो दूसरे खंड का भाग है उसमें आता है। इसके बाद आर्मी का है, आर्मी तो वेद का वो भाग है जिसका की अध्ययन भक्ति से बाहर निकल करके, धर्म से बाहर निकल करके, एकांत स्थान में रह करके अध्ययन करते हैं। और आर्मिकों में विशेष रूप से वैराग्य का वर्णन है, वैराग्य विश्वास का कि कर्म के द्वारा जो कुछ प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त करके ले लिया और अपने जीवन में उसके संतोष और शांति प्राप्त नहीं हुई तो उसकी ओर से उदासीन होकर विरक्त होकर उस वस्तु को प्राप्त करने का प्रयास करें जो कि कर्म साधन नहीं है बल्कि ज्ञान साधन है। उपासना और भक्ति उन लोगों के लिए है जो ज्ञान प्राप्त करते हुए एक बार ज्ञान पर आगे बढ़ते जाते हैं लेकिन आगे करके तो उनको लगता है कि हमारी गति नहीं है, अब हम आगे समझ नहीं पाएंगे, आगे हम जान नहीं पाएंगे और उनको भी प्रतिबंध दिखाई देता है। उन लोगों के लिए उपासना, उपासना वो साधन है जिसके कारण से व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में आने वाले प्रतिबंध बंद हो जाते हैं और वो सत्य के सामने जाकर पहुंच जाता है। और जो विष्णुओं का अंतिम लक्ष्य है प्रतिपादन विषय है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए कभी कभी व्यवहार में ज्ञान के साथ उपासना का भी सहारा लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति चिरहत जितना अधिक है ऐसा अधिकारी उत्तम अधिकारी है जो सत्य तक पहुंचने में सक्षम है, अपने आप में सूर को प्राप्त करता है, उसको देखने में भी सामना करता है, परमात्मा के तक पहुंचने में उसके बीच में कोई बात नहीं होती जो नहीं है सकता लेकिन थोड़ा लंबा रहता है, समय में भी मिलता है। बहुत दिनों तक उपासना करने उपासना करने वाले व्यक्ति भी अपने आत्मसार में बहुत अधिक अंतर नहीं पाते क्योंकि उनकी उपासना या उनकी भक्ति कुछ अपनी ही मान्यताओं के अनुसार रूढ़िवादी बन जाती है या अंधविश्वासपूर्ण हो जाती है तो उसका परिणाम होता है कि व्यक्ति एक चक्र में पहुंच जाता है, यंत्रवत भगवान का नाम करता है, प्रार्थना करता है लेकिन जो विकास होना चाहिए आध्यात्मिक वो जीवन में नहीं आता। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जिसके प्रकाश में ही उपासक या भक्त साधना करता है तो उसे ये मालूम होता जाता है कि हम उपासना क्यों कर रहे हैं और जो उपासना की उसका फल क्या हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, किस प्रकार से उपासना को करें, कैसे भगवान की भक्ति करें जिससे हमारा लाभ भक्ति के लिए हट करें और ज्ञान का विरोध करें। बच्चे ये लोग ज्ञान का भी सहारा लेते हैं और भक्ति का सहारा भी लेते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कहीं कहीं जैसा कि अभी हमने बताया कि विचार चिंतन करते हुए या भक्ति करते हुए या ज्ञान ज्ञान का विचार करते हुए कभी कभी जो चीजें ऐसे चक्र में पड़ जाती है उससे निकल नहीं पाती, ऐसा लगता है कि ऐसा है तो भी ठीक नहीं, ऐसा है तो भी ठीक नहीं, ऐसा है तो भी ठीक नहीं, मन बुद्धि उसमें कहीं कोई निर्णय के लिए बाकी आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसी स्थितियां जब आती है साधना में तब उनको दूर करने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है। قرآن بھگوان کا دھیان کرے, اس میں سمرپن بھاؤ رکھیں, اس میں دین بھاؤ رکھیں, اس میں نشا رکھیں, کوئی پہلے پائی اور چالتا ہے جو پوجا ہے آتی ہے یہ بھی اس میں سہایک ہوتے ہیں. منتر کا جگ ہے, دھیان ہے, یہ سب اپاسنا کی رہی ہیں اور ویکتی کو آگے بڑھانے کے لیے سہایک ہوتے ہیں. اس لیے سمجھدار ویکتی آدت روپ بھکتی کا بھی سہارا دیتے ہیں. کوئی کوئی گیانی ویکتی زیادہ جن کی بدھی کا وکاس ہوا ہے اور اپنے بدھی کے اوپر بھروسہ رکھنے والے ہیں, وہ اپنی بدھی کو لگا کر کے اس مارگ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کے من میں بھکتی نہ ہونے کے کارن سے جان کے مارگ میں بھی آگے زیادہ بڑھ نہیں پاتے اور بنا بھکتی کے ان کا جو پتھر حساب میں آتا ہے وہ الگ نہیں جاتا. اس لیے جانوں کے لیے بھکتی اپیوگی ہے اور بھکتوں کے لیے جان اپیوگی ہے. بلکہ یہ تو ایک شبد ماتر ہے کہ ایک مارگ ہے بھکتی مارگ, ایک مارگ ہے گیارہ مارگ. اپنشدوں میں رشیوں کا کہنا ٹھیک ہے کہ ودیا سے ہی اودیا کی نبتی ہوتی ہے, اس لیے ودیا ہی ایک ماتر پرماتما کو پراپت کرانے والا مارگ ہے اور اس ودیا میں جان اور اپاسنا دونوں ہی مل گئے, دونوں کا ایک سنیت روپ ملا ملا کے روپ ہے, اس کا نام ہے ودیا. یہ ودیا کیا ہے, کیسے اس کے دوارا ستیہ کا درشن ہوتا ہے, یہ سبھی اپنشدوں میں کوئی بھی اپنشد لے لیں اس میں اس کا نہیں پڑے, چاہے ایشاواس اپنشد ہو, چاہے کین اپنشد ہو, چاہے بڑا اپنشد ہو, منگل ہو, مانڈوک ہو, چیتری ہو, چیتری ہو, شاستر ہو, چاندو اپنشد ہو, گدھارنک اپنشد ہو, اور بھی اس کے اتریت اور بھی انیا اپنشد, کیول اپنشد آدی, امرت بند اپنشد ہے. ان سبھی اپنشدوں میں ودیا کے دوارا ودیا کا نام اور سب کا درشن کرانے کا پریاس کیا گیا ہے. اس لیے کسی بھی اپنشد کا آپ ادھیئن کریں اور بھلی خاص اس کے بتائے ہوئے مارگ پر چلیں تو لکشمی پراپتی ہو سکتی ہے. ایسا کوئی آوشک نہیں کہ سبھی اپنشدوں کو پڑھیں تبھی ان کو پورا گیان ہوگا, نہیں, پرتیک اپنشد اپنے آپ میں دور ہے, اتنی ہی مارگ سے ہمارے آدھیاتمک آوشکتاؤں کی پورتی ہو سکتی ہے. پھر بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ ان اپنشدوں میں وہی بات کیسے کہی گئی ہے, وبھن اپنشدوں کا ادھیئن کیا جا سکتا ہے. کبھی ہم ایک اپنشد پڑھیں, کبھی دوسرا پڑھیں, کبھی تیسرا پڑھیں, اس پرکار جب پڑھیں گے تو یہ بھی پتا لگ جاتا ہے کہ سبھی اپنشد کوئی ایک ہی بات تو اپنے اپنے ڈھنگ سے اپنے اپنے پرکار سے دیکھتے ہیں. شہید کی الگ الگ ہے, ان کی اپروچ تھوڑی الگ الگ ہے, لیکن ادیش سب کا یہ ہے, لکشی گئی ہے, پراپتی گئی ہے اور مارگ بھی گئی ہے. جبکہ جہاں گئی ہے وہ اپنے آپ کو شریر اور بالی جگہ سے جڑا ہوا دکھتا ہے, یہاں جو دکھائی دیتا ہے یہ سور جگہ سے پنچ مہابھوتوں سے بنا ہوا پتری ہے, جل ہے, اگنی ہے, وایو ہے, آکاش ہے, اس سے بنا ہوا یہ سور جگہ سے جس کے جب ہم جیسے ویوہار کرتے ہیں. لیکن اس جگت کے مول میں ایک سوکھم جگت بھی ہے, وہ بھی پانچ ہوتی ہے, وہ بھی اس میں بھی آکاش, وایو, اگنی, جل, پتھری, یہ پانچ پنچ مہابھوت ہیں और उन पंच महाभूतों से भी सूक्ष्म सृष्टि की रचना है। जो सूक्ष्म सृष्टि है और वो कैसी रचना है उसको यदि हम अपने भीतर देखें तो जान सकते हैं। उसी से रचे हुए हमारे प्राण है, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, मन बुद्धि है, ये सब सूक्ष्म पंच महाभूतों से रचे हुए हैं। और ये हमारी सूक्ष्म सृष्टि हमारे अंदर की है, सूक्ष्म सृष्टि सूक्ष्म शरीर और उसके अतिरिक्त भी है जो शरीर का बने हुए हैं, जिनमें इनका व्यवहार चल रहा है। तो ये स्तर जगत का सूक्ष्म जगत का है और उसी स्तर पर हमारा सूक्ष्म शरीर का भी स्तर है, इसलिए स्तर भी बड़ी बन रहे हैं। तो देखते हैं कि सूक्ष्म सृष्टि की ही उत्पत्ति प्रकृति के द्वारा हुई है। तो प्रकृति ऐसा मूल तत्व है जिससे कि सूक्ष्म सृष्टि हुई और फिर सूक्ष्म सृष्टि से स्थूल सृष्टि हुई। जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या है, उसका वर्णन तीन गुणों के द्वारा किया जाता है, सत्व रजत और तमस। ये तीन गुण हैं, इनको कहते हैं प्रकृति। इन्हीं के द्वारा सूक्ष्म सृष्टि प्रकृति क्या है। ये तीनों गुण क्या स्वतंत्र रूप से विद्यमान है, ये किसी दूसरे का आश्रित है, इस प्रकृति का भी कोई कारण है, ये प्रकृति ही अंतिम कारण है, इस पर भी विचार किया गया और इस बात पर पहुंचे कि जो आत्मा परमात्मा यह कर्म अंतिम तत्व है उसी पर प्रकृति निर्भर करती है, उसी का आश्रित प्रकृति स्वतंत्र वस्तु नहीं है। परमात्मा जैसे स्वतंत्र विद्यमान है, अपने आप से अपनी सत्ता से विद्यमान है, उस प्रकार की प्रकृति नहीं है। प्रकृति उसी परमात्मा का आश्रित है। ये रूप जो उपनिषदों में मिलता है, ये रूपरेखा इस प्रकार से बनती है अपने व्यक्तित्व की भी और जगत की, और अंत में देखते हैं कि परमात्मा सर्वस्व है और वही हमारे जीवन का आदर्श है, प्रास्तव्य है, उसी ओर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। ये जो प्रथम विचार कर रहे ये टीकाबाद उपनिषद में प्रवेश करने के लिए थोड़े से इतनी जानकारी होनी चाहिए। हम टीकाबाद उपनिषद का अध्ययन करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, इसका फल क्या होने वाला है, इसका विषय वस्तु क्या किया है, ये जानने के लिए इन बातों की आवश्यकता थी। अब हम टीकाबाद उपनिषद में प्रारंभ में एक मंत्र के इसको प्रार्थना उसको देखते हैं, इसको शांति पाठ भी कहते हैं। हर उपनिषद का अध्ययन शांति पाठ के द्वारा किया जाता है। पहले शांति पाठ करते हैं और फिर उपनिषद का अध्ययन करते हैं। ये निश्चित रूप पर मान करके चलना चाहिए कि संसार में जितनी भौतिक विद्याएं हैं और जितना भी ज्ञान मनुष्य को प्राप्त हो सकता है, उस समस्त ज्ञान में ये अध्यात्म विद्या सबसे सरल और सबसे कठिन है। अध्यात्म विद्या सरल ही बहुत है, हमारे अपने जीवन के उपयोग के लिए जो बातें उसकी हैं वो बहुत कठिन बातें नहीं है, लेकिन इस विद्या की गहराई तक उतर करके पूर्ण रूप से इसको समझने की आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इसमें रहस्य भी होता, बड़ी चिंता भी है। इसको समझना बहुत बार इस प्रकार से लगता है कि स्थूल बुद्धि के द्वारा, मनोबुद्धि बुद्धि के द्वारा उसको सबको समझा नहीं जा सकता, उसके समझने के लिए हमें सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। सुख समृद्धि कराने शांत गुजरे जिसमें की छेद करना है बाहर की बातें याद ना आए कोई और दबाव बुद्धि दूर करना हो स्वतंत्र शांत की बुद्धि हो ये भी कार्य बुद्धि हो उसके द्वारा हम विषयों के रहस्य को समझने का प्रयास करें। बाल जगत के प्रकृति के जो नियम है उनका अध्ययन वैज्ञानिक लोग करते हैं लेकिन बाल जगत के जो प्रकृति के नियम है वैसे ही प्रकृति के नियम हमारे आंतरिक जगत के हैं। हम अपने भीतर देखेंगे प्राण और बुद्धि कैसे कार्य करते हैं कैसे रचना होती है इनका क्या प्रभाव होता है तो ये भी उसी प्रकार से होता है जैसे बाहरी जगत में होता है क्योंकि प्रकृति समस्त प्रकृति के नियम एक ही प्रकार के हैं चाहे फूल प्रकृति के हों और चाहे सूक्ष्म जगत के हों चाहे हमारे पारिक शरीर के हों और चाहे आंतरिक सूक्ष्म शरीर हों उसके हों ये सब नियम एक ही प्रकार के उनका कार्यकारण से समान है एक कार्य है तो दूसरा सब कारण है कार्य के मन एक कारण के मन कौन प्रदेशन जो देखने में आता है प्रकृति में वो जैसे बाहरी जगत में है वैसे ही आंतरिक जगत में है। यहाँ तक तो जब हम अध्ययन करने चलते हैं विचार करने चलते हैं तो कोई विशेष कठिनाई नहीं होती क्योंकि हमें इस बात का अभ्यास है कि कार्यकारण किस प्रकार से चलते हैं कैसे उनका प्रभाव होता है कैसे कार्य होता है उनके नियम क्या है हम जानते हैं उसी प्रकार से अपनी जीवन भी विचार कर लेते हैं लेकिन एक सीमा के आगे पहुंच करके हम ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते जहां की कार्य कारण का नियम शिथिल होने लगता है। और उस क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं तब विचित्रताएं दिखाई देती हैं जैसे बताइए कि कार्यकारिणी नियम वहां कार्य नहीं कर रहा इसलिए समझने के लिए विचार करने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि जितना भी जगत है और जगत में जितना हमारा शरीर मन बुद्धि का व्यवहार है ये सब का सब कार्य कारण नियम से चलता है किंतु ये सब कार्य कारण के नियम से चलने वाला जितना भी जगत है ये सब अंधकार एक ऐसे तत्व के ऊपर निर्भर है जो इस नियम से परे परमात्मा और जगत का जीवन इन दोनों के नियमों में अंदर है। परमात्मा देश काल और कार्यकरण के नियमों से लिया है इसके माने ये हम जगत के संबंध है इसलिए देश काल कारण को हो रहा है और कार्यकरण दिखाई देता है ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो ये कार्यकरण हमको जब तक दिखाई देते रहते हैं अनुभव में आते रहते हैं इसके माने हमारा व्यवहार और जीवन जगत के अंतर्गत चल रहा है। जब हम जगत से बाहर निकल करके जाते हैं और परमात्मा के दिव्य क्षेत्र में आ जाते हैं तो वहां न देश है न काल है और न कार्यकारण है। उस स्थान पर जब हम प्रवेश करते हैं तब विशेषताएं दिखाई देती हैं और ये जो हमारा पूर्व अनुभव है जीवन का वो वहां कार्य नहीं करता अद्भुत बात है। और जो वहां पहुंच करके जो हम अनुभव करते हैं वे अनुभव से हमारे जीवन में एक अद्भुत प्रभाव भी आते हैं। एक बार व्यक्ति उस क्षेत्र तक जब पहुंच जाता है और उस अवस्था को देख लेता अनुभव कर लेता है तो उसका प्रभाव व्यवहारिक जगत में जब उसका व्यवहार चलता है कार्य करता है तो उसकी धारणाएं बदल जाती हैं मान्यताएं बदल जाती हैं व्यवहार बदल जाता है कर्म स्वरूप बदल जाता है जीवन समृद्ध ये सब कुछ सारे आनंद संकट में होता है, लेकिन जो परम शक्ति है, जो परमात्म तत्व है, जो अपना भी वास्तविक स्वरूप है, वो कार्यक्रम नियंत्रण प्रगत आबद्ध नहीं है। और वहां तक पहुंच करके यदि हम कार्यक्रम के तर्कों को लगाते हैं तो कभी कभी तो लोग उसको उस अवस्था को तर्कहीन अवस्था देते हैं, तर्कहीन है वहां तो कभी काम नहीं करता। तो तर्कहीन ना होना कुछ लोग दुर्बलता समझते हैं और कुछ लोग जो विचारवान बुद्धिमान लोग व्यक्ति हैं उस तर्कहीनता के विषय में पहुंच जाते हैं, वो उसी को दिव्यता मानते हैं। तर्कहीनता दो प्रकार की, एक व्यक्ति की बुद्धि जो कुंठित होती है, तर्क को जानता ही नहीं, घोर ज्ञान के अवस्था में व्यक्ति तर्कहीन होता है, वो प्रकृति के नियम है उनको भी नहीं जानता, और विवाह अवस्था में व्यक्ति तर्कहीन अवस्था में। लेकिन जब विचारवान व्यक्ति होता बुद्धि कार्य करती है तो बुद्धि में तर्क कार्य करने लगते, बुद्धि का रचना ही है तर्क, जैसे बुद्धि का विकास होता है वैसे वैसे तर्क आते जाते हैं आते जाते हैं और तकनीक बल पर ज्ञान की कमी होती जाती है। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब बुद्धि को अपने ही तर्क के द्वारा ये ज्ञात हो जाता है कि स्वयं बुद्धि और बुद्धि में प्राप्त होने वाले जो तर्क हैं इनकी एक सीमा है, आप ये नहीं कर सकते, अपनी सीमा का ज्ञान बुद्धि को हो जाता है, अपनी दुर्बलता का ज्ञान बुद्धि को हो जाता है और बुद्धि परमाणु तत्व के सामने समर्पित हो जाती है। समर्पित के माने वो ये स्वीकार कर लेती है कि आगे भागीदारी नहीं, आगे वो परमात्मा जो है वही अपने आप से हमको जनावे, हम उसको अपने उसको जाने, तो सब उसकी कृपा पर ही निर्भर करता है, जानना समझना प्राप्त करना उसमें से होना। तो उस अवस्था को भी हम कह सकते हैं कि आप हम सब के ऊपर निकल उस व्यक्ति को हमने प्राप्त कर दिया। इसलिए अध्यात्म विद्या अत्यधिक सूक्ष्म भी है और गहन और राष्ट्रमयी, राष्ट्रमयी व्यवस्था आप यही है कि वहां देश काल और सत्य काम नहीं करके उस चीज पर हम पहुंच जाते हैं, तो राष्ट्रमयी ज्ञान राष्ट्रमयी ज्ञान के माने ये नहीं है कि उसे कोई जानता नहीं ये कोई उसे प्राप्त नहीं कर सकता, ये बात नहीं, वो अपने प्रकार का है, अपने भूमिका है, बस ये बताने के लिए उसे राष्ट्र में कहा जाता है। तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि हमारे निषद राष्ट्र में ज्ञान का उस ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए उपनिषद प्रमाण प्रमाण हमारे ज्ञान कराने के लिए साधन है उसे कहते हैं प्रमाण। जहां हमारी बुद्धि नहीं कार्य कर पाती और वो कुंठित हो जाती है, उस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उपनिषद का जो ज्ञान है, उपनिषद के जो मंत्र हैं, उन्हीं में ऐसी सामर्थ्य शक्ति है कि हम लोग उस राष्ट्रमय क्षेत्र में आगे ले जाते हैं और उसके दर्शन कराते हैं, उसकी प्राप्ति कराते हैं। उपनिषदों में जो ज्ञान कहा गया है, बताया गया है, वो ज्ञान न प्रत्यक्ष के द्वारा प्राप्त होता है न अनुमान के द्वारा प्राप्त होता है, वो केवल उपनिषदों के प्रमाण से ही प्राप्त होता है। इसलिए उपनिषद परमार्थ के ज्ञान में सदा प्रमाण है, ऐसा भी कहा जाता है, सदा प्रमाण है, अपने आप से प्रमाण है, उनको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं अपने आप से प्रमाण। यदि उपनिषद का प्रमाण प्राप्त नहीं होता तो अगर हमारे पास ज्ञान के जितने भी साधन हुए अधूरे हैं और हम उस राहत में सत्ता को नहीं प्राप्त कर सकते, नहीं पहुंच सकते, जहाँ तक ऋषि लोग पहुँच सके और उन्होंने जीवन का अद्भुत आत्मसात किया, एक विद्या को अनुसार इसलिए हम जब उपनिषदों का अध्ययन करते हैं तब इस बात को लेकर के करते हैं कि उपनिषद में जो कहा गया वो अपने स्थान में सत्य, वो बिल्कुल सत्य, सब पर सब सत्य, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है, गलती नहीं है, दोष नहीं है। अगर वो हमारी बुद्धि में विपरीत लगता है, बुद्धि में समझ में नहीं आता, हमको ये लगता है कि बात गलत मानी होती, ऐसा हम नहीं करता, तो इसके माने ये है कि हम अपने आप को ये सोच करके कहें कि अभी हमारी बुद्धि में इतना बल नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसको समझ सकें। इसलिए जब उपनिषद का अध्ययन किया जाता है तब जहां तक अपनी बुद्धि बल होता है तहां तक बुद्धि बल का लाभ में आते हैं, हमारी मौसी लाभ में आती है, समझते हैं। लेकिन जहां बातें नहीं भी समझ में आती है अपनी बुद्धि से, वहां पर भी ये स्वीकार करते हैं कि उपनिषद में कहा गया वो सत्य है और उस सत्य को समझने के लिए अभी हमें अपनी बुद्धि को परिमार्जित करना चाहिए, अधिक शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अधिक निर्मल जब हमारी बुद्धि बनेगी तब वो बात भी हमारी समझ में आए। इस विचार से अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और चिंतन करते हैं, विचार करते हैं। ये बात इसलिए बता देने आवश्यक है कि इन उपनिषदों का अध्ययन का जो द्वितीय विधान तरीका है वो अपने ढंगा एक अपना तरीका है। जो भौतिक विज्ञान के अध्ययन करने का तरीका है वो तो सदरूप है, लेकिन उपनिषदों का जो अध्यात्म विद्या का अध्ययन करने का तरीका है इसका अपना तरीका अपना है। इसलिए यदि हम इसका अपना तरीका अभ्यास न हुआ और भौतिक विज्ञान का तरीका यहाँ अपनाते रहे तो हमसे गलती हो जाती है और अध्यात्म विद्या हमारे हृदय में ठीक ठीक आगे पाती, स्थान प्राप्त कर पाती, उस प्राप्त नहीं कर पाती। वास्तव में ये उपनिषदों का अध्ययन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने व्यवहारिक जीवन में इंद्रियों के सुख शारीरिक सुखों को भोग करके दे दिया और उनसे व्यर्थ हो गए, उन्होंने व्यर्थ ऐसा अपना हो गए कि परीक्षा करके लिए ही कि जो हम चाहते हैं इस भौतिक जीवन में प्राप्त द्वारा नहीं है। परीक्षा करके देखने के बाद ये भी है कि जितने भी उपाय में हो सकते थे जहां तक बुद्धि अपनी रह सकती थी उन सब उपायों को अपना करके देख लिया, वही परीक्षा। जब सब परीक्षा हो गई और ये मालूम हुआ कि जो हम परम शांत विश्राम आनंद सुख मोहता सब जनता जैसी हम चाहते हैं नहीं तो यहाँ नहीं है ऐसा निश्चय करके फिर अध्यात्म विद्या के क्षेत्र में आता है तो मन के एक प्रकार से वो विरक्त हो गए। ऐसे विरक्त पुरुषों के लिए ये अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या का अध्ययन कोई कर रहा हो सीख रहा हो लेकिन उसे ये लगे हाँ ठीक है अध्यात्म विद्या तो है लेकिन भौतिक विद्या के द्वारा भौतिक साधनों के द्वारा ही तो जीवन में सुख प्राप्त होता है और अभी इतना प्राप्त हुआ नहीं कितना हम और भी प्राप्त कर सकते हैं और तो और प्रयास करेंगे तो और भी नहीं प्राप्त हो सकता है जब और प्रयास करेंगे तो हमें जीवन में और सुख प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की आशाओं में निर्भर हुए व्यक्ति हैं वे लोग जब अध्यात्म विद्या का अध्ययन करने के क्षेत्र में आएंगे तो भौतिक जगत की आशाएं इच्छाएं कामनाएं उसके बुद्धि को मन बुद्धि को जो लक्ष्य है उसे हटाती रहेंगी और विचलित करती रहेंगी और व्यक्ति को जितनी एकाग्रता के साथ जितने समर्पण के साथ सिर्फ अध्यात्म विद्या को सीखना चाहिए वो भी कर्मता समर्पण आएगा। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें कि हम जब इसका अध्ययन करें तो वैराग्य भाव से दूर रहें। वैराग्य का होता है वैराग्य के माने ये नहीं को इतना सरबार छोड़ दे या किसी लोगों से लड़ाई करने लगे या कोई सामान लेने लगे बाहर इस प्रकार को सावधान है कि हम व्यस्त हो गए कि ये नहीं चाहिए किसी को नहीं चाहिए किसी को ये सारी बातों से लाभ नहीं मिलेगा। वैराग्य आंतरिक वैराग्य की जो कुछ हमें प्राप्त हुआ जो कुछ हमारे पास है वो सबसे बड़ा अधिकार है और हमें जो हमें प्राप्त होना है उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। बस ये कहकर के उसको वही रहने दो छोड़ दो और आगे बढ़े अपने मन को ज्ञान विचार द्वारा अज्ञान विद्या की तरफ हम आगे बढ़े तो बस ये हमारा वैराग्य हो गया। और व्यस्त भाव से कम से कम जितनी देर तक बैठ करके अध्यात्म विद्या का चिंतन विचार करें घंटे आधे घंटे उतनी देर तक हमें अपने भौतिक जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देना है। वो बाद में उठ करके जाएंगे अपनी जो उनके कार्य में लगे तो उनको देखेंगे उनको भी सुलझाना है समझाना है अपने बहुत से कार्य हैं घर गृहस्थी के कार्य हैं व्यापार के कार्य हैं नौकरी नाते के कार्य हैं और छोटे व्यवहार के कार्य हैं उन सब कार्यों को आगे देखेंगे उस समय लेकिन जिस समय अध्ययन कर रहे हैं मानव उनको कुछ है ही नहीं कहीं कुछ नहीं एकमात्र जो हम विचार कर रहे हैं बस ये ज्ञान और हम बस अपने जीवन समाज कर रहे और इस क्षेत्र के बाहर नहीं ऐसी एकाग्रता रखें कि उसको समझने का प्रयास करें। ये शांत पाठ का इसको थोड़ा दबाव लेते हैं और आपको हमने मौके करा दिया आप थोड़ा सा इसमें मतलब कि जो राष्ट्रीय सरकार के रूप में है ऐसे ये